श्रद्धस्य ज्ञानाञ्जन श्लाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भाविधां येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदादिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम भगवान ने कहा था पांचवे श्लोक में जो जीव होता है वो एक्टिविटी का प्रूफ है। अगर कोई व्यक्ति जिंदा है तभी वो बोलेगा चलेगा जो भी एक्टिविटी है। आत्मा और प्रवृत्ति एक्टिविटी ये इसको दूर नहीं कर सकते, एक दूसरे से हटा नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे आपने 10 सेकंड का एक्सरसाइज किया था लास्ट टाइम, 10 सेकंड में आप क्या कर रहे थे? सांस ले रहे थे। और क्या कर रहे थे? आप कुछ नहीं कर रहे थे। तो कुछ नहीं कर रहे थे वो भी तो करना ही हुआ, कुछ नहीं कर क्या कर रहे कुछ नहीं कर रहे तो वो भी तो करना ही हुआ। तो इसलिए से आत्मा जो है वो निरंतर एक्टिव रहता है। अगर वो सो रहा है तो वो भी एक क्रिया है, क्यों सो रहा है। तो आत्मा के साथ एक्टिविटी जुड़ी हुई है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मौनम आचरण करता है, मौन तो हमने एग्जाम्पल दिया था कि वो लिख लिख के देता है तो क्या फायदा, वो सबको आंसर सबको लिख लिख के देता है। तो इसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कार्य को वो रोक देते हैं, एक्टिविटी को रोक देते हैं, और अभी तक उनका जो ज्ञान है वो स्थिर नहीं हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो वस्तु स्थिति को समझ नहीं पा रहे और कर्म का त्याग कर दिया। ऐसे लोग जो होते हैं उनको धर्म ध्वजी कहा जाता है। वो टेक्स्ट नंबर 6 में भगवान इसका वर्णन करते हैं, वो पढ़िए।
जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है।
मिथ्याचारी कहलाता है। कर्मों का त्याग कर रहा है और फिर भी उसका मन जो होता है वो निरंतर विषयों के प्रति आसक्त रहता है। उसने कर्म छोड़ दिए, सब संन्यास ले लिया है, सब कुछ किया है। जैसे आजकल कई बार ऐसा होता है ना, जैसे न्यूज़पेपर में आते रहते हैं कि कोई साधु कोई बाबा ऐसा कोई पकड़ा गया और उसने कैंडल खरीदे थे। स्कैंडल में अधिकतर स्कैंडल दो प्रकार से होते हैं, या तो धन का होता है, धन का कोई इधर उधर करना हेरा फेरी, या फिर स्त्री से रिलेटेड होता है। दो ही प्रकार के स्कैंडल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। तो ये जो स्कैंडल करने वाले लोग होते हैं, ये जब भी वो सब कुछ छोड़ के आए थे लेकिन उनका मन जो था वो निरंतर विषयों के प्रति आसक्त था, निरंतर उसका चिंतन कर रहा था। ऐसे हजारों 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 एग्जाम्पल कलयुग में देखने को मिलते हैं, जिसमें व्यक्ति वैरागी बनने का दावा करता है, शिष्यों से पूजा लेता है, ये सब कुछ करता है, लेकिन उसका मन जो होता है वो माया के प्रति आकर्षित होता है, वो हृदय में चिंतन करता रहता है, मन में चिंतन करता रहता है। तो इसको बोलते हैं मिथ्याचार, वो स्वयं को धोखा देता है। शास्त्र में क्या कहा है, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा, जाए तो विषयान है। वो कर्म कर रहा है लेकिन उसके मन में, कर्म का त्याग कर ले लेकिन मन में वो विषय का चिंतन कर रहा है, और विषय से जाए तो ध्यान कर रहा है तो क्या होगा, संग होगा, और संग से क्या होगा, काम उत्पन्न होगा, संग से काम का उत्पत्ति होगी। और उस जिसके हृदय में काम की उत्पत्ति होती है वो कभी न कभी अपने इंद्रियों का उपयोग कर ही बैठता है, कभी न कभी। जिसके मन में काम, इच्छा, काम का होता है इच्छा, इच्छा जागृत हुई है तो आज कल परसों कभी तो वो अपनी इच्छा को एग्जीक्यूट करने ही वाला है। तो इसको बोलते हैं मिथ्या आचार। मिथ्या आचार का अर्थ संस्कृत से अगर आप शब्द भी देखो तो मिथ्या का अर्थ होता है फॉल्स एंड आचार का अर्थ होता है एक्टिविटीज, फॉल्स एक्टिविटीज। मिथ्या आचार, मिथ्याचारी या फिर ढोंगी, ढोंगी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, इस प्रकार का ढोंगी। और कई बार ऐसी मिथ्याचारी वृत्तियां, ध्यान रखना चाहिए हमें, ऐसी मिथ्याचारी वृत्ति कई बार भक्तों के भीतर भी आती है। मिथ्याचारी वृत्ति वो क्या करते हैं, बाहर से कुछ और प्रस्तुत करते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। जैसे एक भक्त है, दो तीन दिन पहले मुझे मिला था, वो सबको ऐसा ही बोल रहा है कि मैं रोज सोना माला जप करता हूँ, मैं रोज सोना माला, सबको ऐसा ही बोल रहा है। फिर एक बार हमने उसको पूछा कि मुझे तो नहीं लग रहा है कि आप सोलह माला जप कर रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा है, तो सच क्या है? तो वो भक्त ने कहा बात प्रभु जी आपकी सही है, मैं सोलह माला नहीं करता। तो मैंने कहा कितनी माला करते हो आप? बोले एक भी नहीं करता। कभी करते हो? हाँ कभी करता हूँ। दीक्षा लिया है? बोले हाँ लिया है, मैं सोलह माला नहीं करता। अभी आप इसको क्या बोलोगे, इसको मिथ्याचारी नहीं बोलोगे? वो सबको ऐसा कह रहा है कि मैं सोलह माला जप कर रहा हूं, लेकिन वो अपने आचरण में वो कुछ, वो केवल झूठ बोल रहा है सबके सामने। एक एग्जांपल हमने आपको दिया, लेकिन ऐसे कई एग्जांपल होते हैं, सो मेनी सच एग्जांपल। कोई सोलह माला के लिए झूठ बोलता है, कोई किसी और चीज के लिए झूठ बोल रहा है। तो ये इसको बोलते हैं मिथ्याचार। तो आप क्या कहते हो, मिथ्याचारी व्यक्ति भगवान कहते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार बताए थे, मिथ्याचारी व्यक्ति से जो आपका जो भंगी है ना झाड़ू वाला, बाहर जो झाड़ू सफाई कर रहे हैं, वो अच्छा है, क्योंकि कम से कम वो अपना कर्म कर रहा है और ढोंग नहीं कर रहा है। वो जो है वो दिखाता है भाई मैं झाड़ू वाला हूं, मैं मेरे में तमोगुण का प्रभाव अधिक है तो मैं हूं ऐसा। मुझसे नाटक नहीं कर रहा है कि बाहर से दिखाएगा कि बड़ा पंडित है, बड़ा विद्वान है या भक्त है, त्यागी है, सुशील है, विनम्र है, ऐसा दिखावा नहीं करता है वो, डुप्लीसिटी नहीं है। तो आप समझे डुप्लीसिटी। अभी आप कहेंगे प्रभु ये तो कई भक्तों में हमने देखा है, तो बहुत सारे आचरण में हमने तो देखा है, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे तो मिथ्याचारी हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि शायद मैं भी इसमें आ जाऊं, हम ऐसा सोचेंगे मैं भी इसके अंदर आ जाऊं, मैं भी 100% मेरा आचरण जो है वो मिथ्याचारी, 100% भक्त के रूप में नहीं भी हो सकता, शायद हो सकता है 5% मैं मिथ्याचारी हूं, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेकिन अगर हम जानते हैं कि ये मिथ्याचार है तो उसका त्याग करना चाहिए सबसे पहले। जब आप जानते हो कि मिथ्याचार है तो इसका त्याग करना चाहिए। बी वॉट यू आर, आप जो हो वो बताइए, जो आप नहीं हो वो मत बताइए, क्योंकि बोलते हैं नकल में अकल नहीं। आप कितना भी प्रयास करोगे आप झूठ को कितनी बार छिपा पाओगे, कितना भी प्रयास, यू कैन नॉट हाइड यू नो लाई 1000 times। उस एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो एक तरीका यह हो। दूसरा, अगर आप इस बात को समझ लेते हो कि इसको मिथ्याचार कहते हैं और ये मेरे आचरण में कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहा है, अगर आप इस बात को समझते हो और आप इस बात को अपराध भावना से देखते हो कि मुझसे गलती हो रही है, ये इस भावना से देख रहे हो, इसका अर्थ क्या हुआ कि आपको सुधरने की इच्छा है, आपको परिवर्तन की इच्छा है। तो परिवर्तन की इच्छा वाला जो भक्त होता है, कम से कम वो व्यक्ति जो होता है वो इसमें से निकलने का पूरा चांस है उसके पास, इसलिए उस व्यक्ति को भगवान कृपा दे सकते। लेकिन जो मिथ्याचारी है और उस मिथ्याचारी होने का उसको गर्व है, उसको अभिमान है, तब तो हमें समझना चाहिए कि वो बेचारा बहुत ही दुर्भाग्य की स्थिति में है, वो दुर्भाग्य है। तो मिथ्याचार यहाँ पर जो हुआ है उसमें कई मायावादी लोग भी मिथ्याचारी होते हैं। जैसे योग साधना के लिए जाते हैं, फिर विषयों का चिंतन करते रहते हैं, तो फिर वापिस आ जाते हैं, फिर अस्पताल बनाते हैं, फिर फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं इस प्रकार से, या फिर कभी इंद्रियों का भोग भी करते रहते हैं। मायावादी लोक में अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि ऐसा क्यों होता है उनके लिए, क्योंकि उनका कोई हायर टेस्ट नहीं है। परम दृष्टवा निवर्तते, हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम, हायर टेस्ट नहीं है उनमें। अभी हायर टेस्ट नहीं है और लोअर टेस्ट का त्याग कर रहे हैं, जो निम्न कोटि के रस है उसका त्याग कर रहे हैं और उच्च कोटि का रस प्राप्त नहीं कर रहे, तो क्या होगा? उसको कोई रस तो चाहिए ही, कोई व्यक्ति भूखा कैसे रहेगा? आप उसको बोलो कि ये तो शुद्ध घी का हलवा नहीं है, इसको मत खाओ, तो बोले हाँ ठीक है, बंद कर दिया। और बोले जो शुद्ध घी का हलवा वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा, या वो भी वो खाता नहीं, तो भूखा थोड़ी रहेगा। वो क्या करेगा? जो निम्न रस है उसको वापिस खाएगा। अर्थात जो जिसका त्याग उसने एक बार कर दिया था उस चीज को फिर से अपना लेगा, वही इंद्रिय भोग को फिर से अपना लेगा। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो धोबी का कुत्ता हो गया है ना। अभी कैसा हो गया कि वो त्याग सबको, सबके सामने सन्यासी बाबा है, लेकिन अंदर से वो एक नंबर का लंपट आदमी है। ऐसा ही होगा उसका हाल। वो लोग मिथ्याचारी कहा जाते, मिथ्याचारी। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन को उसके अधिकार के पर कर्म करने को कहा था, सन्यास अगर ले लेता तो मिथ्याचारी कहा जाता, कर्मण्य वाधिकारस्ते, ऐसा कहा था राइट। कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, कर्म का त्याग करने का अधिकार नहीं है तुम्हारा। अधिकार का अर्थ होता है एलिजिबिलिटी ऑल्सो, एलिजिबिलिटी मेरी योग्यता, मेरी योग्यता क्या है? कर्म करना। तो जिस तरह से अर्जुन अपने आध्यात्मिक गुरु से सीख रहे थे, उसी तरह से हमें भी गुरु से ये चेक करना चाहिए कि मेरा एलिजिबिलिटी क्या है, मैं किस चीज के लिए योग्य हूँ। जैसे आप बता रहे थे ना अभी, कोई आप बता रहे थे कि मैं वृंदावन में रहना चाहता हूँ, तो गुरु से पूछेंगे आप कि क्या मैं उसके योग्य हूँ। कोई भी कार्य करने से पहले अगर आप गुरु की आज्ञाओं को ध्यान में रखोगे तो परिणाम यह आएगा कि आप इस प्रकार के मिथ्याचार से बच जाओ। क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं उसका सीधा आधार उसके परिणाम से आता है, फलेन परिचयते। फलेन परिचयते का अर्थ क्या होता है कि अगर आपके छोटे से प्रयास से अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका प्रयास भक्ति के अनुकूल हुआ कि नहीं? अगर कोई दूसरे व्यक्ति आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहा है तो वो भक्ति के अनुकूल हुआ, लेकिन आप कुछ अच्छा कर रहे हो, परिणाम ऐसा आ रहा है कि वो भक्ति छोड़ के जा रहा है, तो क्या करना है? वो आप अच्छा कार्य कर रहे हो लेकिन वो भक्ति छोड़ के जा रहा है, तो क्या करने का? वो कार्य कैसा है, अच्छा है या बुरा है? वो कार्य अच्छा है लेकिन उसका परिणाम ऐसा रहा है कि वो सामने वाला व्यक्ति भक्ति छोड़ के जा रहा है, तो वो कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि फलेन परिचयते, हर एक कार्य अच्छा या बुरा उसके परिणाम के आधार से नापा जाता है, उसका परिणाम क्या आता है वो कार्य का, है ना। इसलिए कई बार कहते हैं ना, आप कहते, कई बार हमारे बक लोग कहते कि हमारे गुरुजन बहुत दूर की सोचते हैं, दूर का सोचते हैं कि ये होगा तो बाद में ये होगा, इसके बाद फिर वो होगा, उसके बाद फिर वो होगा, वो सब उनको पता होता है, ये स्टेप के बाद ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, एक्सपीरियंस इतना है। तो बाद में पता पड़ता है कि अरे 5 साल के बाद से दिखेगा भी नहीं, इससे अच्छा अभी उसको मना कर दो। आप उसको मना, गुरु महाराज मैं तो प्रचार के लिए परमिशन मांग रहा था, आपने मना कर दिया। इसके लिए होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि गुरु जानते हैं कि हमारी योग्यता क्या है, हम किसके लिए क्वालिफाइड है और किसके लिए क्वालिफाइड नहीं है, वो जानते हैं अच्छे से। इसलिए उसके उस आधार पर कर्म करने से लाभ होता है। प्रभुपाद इस विषय में लॉस एंजेलिस में इस लेक्चर में बताया था कि एग्जाम्पल भी दिया साथ में इसका कि When you feel hungry, when a hungry man is there, immediately you will feel satisfaction. And when he is fed, he will say, thank you, I had enough. जब उसको भूखा व्यक्ति उसको भोजन देते तो परिणाम आता है, ही इज फुल. तो उसी तरह से हमें अपने आप को, इफ यू आर सिंसियर यू शुड एग्जामिन योरसेल्फ. अगर आप सिंसियर हो तो आपको निजी मूल्यांकन करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए, हम कहां पर पहुंचे हैं आज, वेयर वी आर टुडे. इसको सोचता है, अगर सिंसियर है तो, नहीं तो कहीं सिंसियर नहीं होते तो दे डोंट थिंक ऑन इट. So everyone has to think himself, how far I have advanced. मैं मेरा एडवांसमेंट कितना हुआ है वो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए. हाउ फार आई हैव एडवांस्ड, उसको नियमित रूप से चेक करना चाहिए कि मेरा भौतिक रूप से जो कंटामिनेशन या दोष है, भौतिक जो कलमश है मेरे हृदय में कितना दूर हुआ है, वो हमें नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए. देन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट मिथ्याचार इज एंड व्हाट मिथ्याचार इज नॉट. ओके नेक्स्ट, अटैच सन्यासी और डिटैच हाउस होल्डर के विषय में भगवान बताते हैं. तो पढ़िए माइक पास. यहाँ पर क्या है, ड्यूटीफुल हाउस होल्डर. ड्यूटीफुल हाउस होल्डर मीन्स जो घर गृहस्थ है लेकिन वो कर्तव्य कर्म को छोड़ता नहीं है और वो कर्मयोग में स्थिर है. कर्मयोग को आप निष्काम कर्मयोग के रूप में भी कह सकते हो, कर्मयोग में स्थिर है. तो वो व्यक्ति सन्यासी जो मिथ्याचारी होता है उससे अच्छा है. अटैच सन्यासी और डिटैच हाउस होल्डर, समझे. आसक्त सन्यासी और अनासक्त गृहस्थ, तो इन दोनों में कौन अच्छा है? अनासक्त गृहस्थ. वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, परिवार है, लेकिन वो अनासक्त है. वो व्यक्ति, वो ढोंगी बाबा मिथ्याचारी जो है उससे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो ढोंग नहीं कर रहे. इसलिए प्रभुपाद अपने तात्पर्य में वर्णाश्रम का बड़ा महिमा बताया इस श्लोक में. जो लोग अपने अपने निजी कर्तव्य का पालन करते हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं. जैसे ब्रह्मचारी है तो उसको ब्रह्मचारी के नियम को फॉलो करना चाहिए, उसको गृहस्थ के नियमों में क्या आवश्यकता नहीं है. और जैसे कोई व्यक्ति गृहस्थ बनता है तो गृहस्थ जीवन में जितने भी नियम होते हैं वो सब नियम को फॉलो करें. तो इस तरह से जितने भी वर्ण और जितने भी आश्रम है वो जो भी आपके अनुकूल होते हैं, जो आपके जहां पर हम अवस्थित हैं, वो कार्य को त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके परिणामों का त्याग कर देना चाहिए. अर्थात वो भगवान की प्रस्तुति के लिए, अनासक्त होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए. पर भगवान कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है इज बेटर, वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है. निष्काम कर्म योग या दूसरे रूप से देखा जाए वो धीरे धीरे आगे फिर भक्ति योग में परिवर्तित हो सकता है. वो निष्काम कर्म योग कर रहा है लेकिन बाद में भक्ति योग में वो जा सकते हैं. जैसे भौतिकवादी व्यक्ति कैसे होते हैं, भौतिकवादी व्यक्ति केवल एक ही सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मेरा लाभ कहां पर होगा, मेरा लाभ कहां पर होगा, है ना. टाइम इज मनी, मेरा जो टाइम है वो धन है, हर एक सेकंड मेरा कीमती होता है, एक एक मिनट का हजारों लाखों रुपया होता है, है ना. ऐसा लोग सोचते हैं लेकिन वो आसक्त होते हैं अपने कर्म के फल के प्रति. और यहां पर जिसकी बात हो रही है वो कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं होते. अर्थात वो लोग कर्म करते हैं ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर, अर्थात वो व्यक्ति ज्ञान का उपयोग करके कर्म करते हैं।
डिस्ट्रैक्शन
कर्म को करते हैं, लेकिन उसमें ज्ञान को ऐड कर देते हैं, ज्ञान के आधार से कर्म करते हैं। इसलिए वो लोग अनासक्त रह सकते हैं, जानते हैं मैं शरीर नहीं हूं, वो जानते हैं, इसलिए वो अनासक्त रह सकते हैं। कलयुग में बहुत मुश्किल है ये सब, राइट? कलयुग के अंदर लोग 99.99% लोग केवल फल की कामना से ही कर्म करते हैं, नहीं मुझे क्या मिलेगा। तो इस प्रकार से अनासक्त गृहस्थ ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता है। निष्काम कर्म योग करने वाला, उसको कोई इच्छा नहीं रहती हृदय में। सो इस्कॉन आपको ये सहायता करता है, अगर आप इस्कॉन के केंद्र में जुड़ते हैं तो इस्कॉन हेल्पफुल है। कैसे? इस्कॉन हमें निष्काम कर्म योग का पूरा अवसर देता है। आप तन से, मन से या धन से, किसी भी तरह से आप डायरेक्टली भगवान की सेवा कर सकते हो, कृष्ण की, राधा गोविंद जी की, डायरेक्टली यू कैन सर्व, तन से, मन से, धन से, किसी भी तरह से। दैट मीन्स यू गिव दैट सर्विस विदाउट डिजायर फॉर द फ्रूट्स, है ना, का फल की कामना होगा त्याग करके। तो इस्कॉन इज वेरी हेल्पफुल, वी शुड बी थैंकफुल टू इस्कॉन कि हमें ये अवसर दे रहे कि हम सेवा दे सकते हैं। मैं कई बार भक्तों को कहता हूँ कि ये आपका अपना घर है, आप यहाँ पर सेवा दे रहे हो, और ये हमें प्रभुपाद को, इस्कॉन मैनेजमेंट को, हमारे प्रमुख प्रेसिडेंट जो है उनका, इन सबके हमें आभारी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये व्यवस्था करके दी है ताकि हम सेवा कर सके। और इनको अप्रूव किया है जीबीसी बॉडी ने, और जीबीसी बॉडी को अप्रूव किया है प्रभुपाद ने, तो हम प्रभुपाद के आभारी हुए ना, हम भगवान के आभारी हुए, हम इस मैनेजमेंट के आभारी हुए कि हमें सेवा का अवसर दे रहे। कहीं ऐसे मंदिर है जहां पर टेंपल नहीं है, तो वहां पर आपको इतनी सारी सेवा नहीं मिलेगी जितनी सेवा आप यहाँ पर कर पा रहे हो।
जुड़े लेकिन वो भी प्रसाद सेवा भी कर सकता है, और भी जो उनके लायक हो वो सब सेवा कर सकते हैं। कई संप्रदाय ऐसे होते हैं कि उनकी कमेटी होती है, कमी आ रहे तो उसकी कमेटी होती है, तो मतलब कमेटी में कमेटी के लोग ही काम करेंगे। बाहर के कोई जो सेना का अवसर जो भी प्राप्त,
प्रभुपाद सबका स्वागत किया, जो भी भक्त सेवा करना चाहे कर सकते। यस, देखो ऐसे तो रूप गोस्वामी ने 50% बोला है कि 50% हमारा जो मुनाफा होता है वो भगवान की सेवा में देना है, 50%। अब अगर आप अपने घर में मंदिर की स्थापना करते हो, प्रसाद विग्रह लाते हो, पूजा करते हो, और आपके अधिकतर आपके जो इतने भी कार्य भगवान की सेवा के लिए है, समझ लो कि आप प्रचार भी करते हो, आप फिजिकली भी मंदिर में सेवा देते हो, तो इस तरह से जो भी कार्य, तो एक रूप से अगर आपका 50% में से 10 या 15 या 20 या 25% 100 में से अगर आप दान के धन के रूप में देते, या फिर आप बाकी का जो बचा हुआ है वो आप अपने मेंटेनेंस के लिए यूज कर रहे हो, तो आप समझे अगर आपका उद्देश्य, अगर मैं प्रसाद ले रहा हूँ, मैं प्रसाद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे सेवा करनी है भगवान की, और वो प्रसाद का खर्चा मैं अपने कमाए हुए धन से यूज करता हूँ, तो ये भगवान की सेवा का हुआ कि नहीं बना। लेकिन इसको हमें समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मुझे कृष्ण भक्ति या प्रचार या मंदिर ये सब में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हें केवल एक चेक लिख के दे सकता हूँ बस। ऐसे भी होते हैं ना लोग कि आपको केवल चेक साइन करके दे सकते हैं, आप जितना चाहे ले जाओ, लेकिन आप बोलो कि मंदिर में आइए या फिर कुछ सेवा कीजिए तो वो मुझसे नहीं होगा. सो लाइक दैट. बट द पॉइंट इज दैट 50% ऑफ योर इनकम शुड बी यूटिलाइज फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस मिनिमम. चाहे आप उसके आप अपना निजी परिवार को पालन भी कर रहे हो क्योंकि आपका कृष्ण भक्त परिवार है इसलिए, फॉर एग्जाम्पल. और अगर आप चाहो तो मंदिर में धन से भी सेवा दे सकते हो. धन से सेवा देना ये बहुत अच्छी बात है. क्यों अच्छी बात है? क्योंकि इससे हमारा हृदय जो है उसमें बड़ी मेहनत करके कमाया हुआ धन होता है ना, उसको आप दे रहे हो. अपना बोलते हैं जहां धन है वहां मन है, तो वहां बड़ी मुश्किल से वो पैसा देना होता है. लेकिन अगर कोई दे पाता है इसका अर्थ हुआ कि वो निष्काम कर्म योग की स्थिति पर आ रहा है. बहुत मुश्किल है किसी को बोलो डिवोटीज को भी, अगर भक्त को भी आप बोलो कि आप इतना धन दो तो वो सोच एक बार सोचेगा भक्त भी कि मैं कैसे दूं, इतना मेहनत करके कमाया धन है कैसे दूं. लेकिन अगर धन देता भी है तो वो उसके लिए अच्छी बात है, वो उतना अनासक्त हो जाएगा धन से. सबका अपना स्थान है, धन का भी अपना नहीं, सबका अपना स्थान है. जरूर हो सकता है कि किसी के पास धन नहीं है तो क्या करेगा. सही में धनी है जेन्युइनली, ऐसा नहीं कि प्रभु जी मैं तो हमेशा, जिसके पास धन होता है वो हमेशा रोता ही रहता है कि मेरे पास धन नहीं है. यू नो हाँ, तो वो फिजिकल सेवा दे सकते हैं. फिजिकल दे, कुछ लोग फिजिकल सेवा नहीं दे पाते, धन से भी नहीं दे पाते, तो बुद्धि से सेवा करते. दिया प्राण अर्थ दिया वाचा.
जो लोग बिजनेस करते इनकम टैक्स चोरी करते हैं तो कंपल्सरी करना ही पड़ता है, तो इसके बारे में क्या? चोरी करके जो दान देते हैं तो चोरी का पैसा है ना, सरकार की चोरी करके पैसा डोनेशन में देना तो उसका क्या लाभ है?
वेल, प्रभुपाद हमेशा यही चीज बताए कि जो भक्त होते हैं उनको सरकार के नियमों को फॉलो करना चाहिए. प्रभुपाद हमेशा ऐसे ही बताया कि जो भक्त होते हैं उनको सरकार के नियम को फॉलो. अभी आप शायद ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि सरकार तो भक्त है नहीं, सरकार को तो कोई, वो तो बहुत ऐसे काम भी करती है कि जो शास्त्र का आधार पर नहीं है, तो उस सरकार को क्यों पैसा दे. लेकिन जिस राज्य में आप रहते हो उस राज्य के कानून को फॉलो करना ये एक सज्जन व्यक्ति की निशानी है. भक्त की तो बात छोड़ दो, ये सज्जन व्यक्ति की निशानी है, तो उसको फॉलो करना. आप अमेरिका जाओ तो वहां के रूल फॉलो करोगे, आप इंडिया में आओगे तो इंडिया के रूल फॉलो करोगे. लेकिन कुछ ऐसे लोग है कि जो भक्त नहीं है और टैक्स का चोरी करते है, और फिर आपके पास बोले इस्कॉन वाले इनको दे दो, तो इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है. अगर वो धन दे रहे हैं, हालांकि वो उसका चोरी का माल है वो तो हमें नहीं पता, और शायद पता भी है लेकिन उसका शुद्ध उपयोग तो वो और कुछ है ही नहीं, इंद्रिय भोग करेगा, इससे अच्छा है भगवान की सेवा में दे. तो वही उसके शुद्धिकरण का एक तरीका हो सकता है पाप कर्म का. लेकिन हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे कि तुम्हें, हाँ तुम चोरी कर रहे हो, वेल डन देते रहो, इधर देते रहो. नो, हम उनको प्रमोट नहीं करेंगे. अगर हमें हमारी कोई राय लेगा तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार के जो नियम है उसको फॉलो करो, जितना आपको भरना होता है आप भरो. हाँ ठीक है, व्यापारी होते हैं वो टैक्स बचाने के लिए कुछ लीगल तरीके अपनाते हैं, जैसे इधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, उधर इन्वेस्टमेंट कर दिया, लाइक दैट. बट वो चोरी करना दैट इज नॉट फॉर डिवोटीज, वो भक्तों के लिए नहीं है.
चोरी नहीं करेगा कोई ऑफिसर आया फैक्ट्री में, इतना रूल्स है उसको फॉलो करना पॉसिबल है ही नहीं. हाँ, कोई ऑफिसर आया तो उसको पैसा तो मांगेगा तो ही जाएगा, तो पैसा कहाँ से लाएगा?
हाँ, वो बात सही है आपकी कि कई बार इस प्रकार से होता है. लेकिन फिर भी प्रभुपाद गवर्नमेंट को कोऑपरेट करने का ही कहा है हमेशा, क्योंकि कल उठ करके, फॉर एग्जाम्पल कल उठ करके उसके जो भी किए गए है, जो भी कुछ ने किया ब्लैक मार्केट जो भी किया, कल उठ के अगर पुलिस ने पकड़ लिया या किसी कारण से पकड़ा गया तो लोग क्या कहेंगे? ये इस्कॉन वाला था, ये भक्त था, और यह ऐसा काम कर रहा था। तो बैड नेम किसको जाएगा? संस्था को जाएगा, गुरु परंपरा को जाएगा, कृष्ण को जाएगा, भक्तों को जाएगा। इसलिए इस प्रकार के कार्य से हम अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि उसको पता है कि पकड़ा जाऊंगा तो बदनामी होगी, सबकी बदनामी होगी। इसलिए तो छोटा मोटा जैसे व्यापारी होता है वो थोड़ा इधर उधर करता है तो इसको वो ज्यादा देखा नहीं जाता है। एक बार प्रभुपाद लिखे लेक्चर में, प्रपट में एक जगह लिखा है, व्यापारी अगर सच बोल दे तो व्यापार नहीं कर सकता है, वो व्यापार नहीं हो पाएगा, कंपल्सरी उसको झूठ बोलना ही पड़ता। वो कहता है आपको, मेरा इसमें कोई मुनाफा नहीं है, मैं तो उल्टा जेब में से निकाल करके दे रहा हूँ, इसमें कुछ उपाय कोई मुनाफा नहीं है। हालांकि उसका मुनाफा होता है, लेकिन वो व्यापारी व्यापार कर ही नहीं पाएगा कि अगर वो सच सच सब कुछ बता देगा तो। इसी तरह से व्यापारी को झूठ बोलने का इस प्रकार का झूठ है वो उसको परमिटेड है। क्षत्रियो को हिंसा करना, वो भी हत्या करता है क्षत्रिय, लेकिन वो कर रहे, वो नहीं करेगा तो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा फिर वो। इस तरह से ऐसे कुछ कुछ कार्य होते हैं वो उसको कर्म। इसलिए बोलते हैं ना, जब तक कोई व्यक्ति निष्काम कर्म योग तक नहीं पहुंचता है तो उसके कर्मों का बंधन लग जाता है, और बंधन लगेगा तो फिर उसको उसका हिसाब भी चुकाना पड़ेगा। क्योंकि वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में, जज को फांसी लगती है, वो तो हजारों को फांसी देता है, जज को फांसी इसलिए नहीं लगती क्योंकि उसका काम ही यही है, इसको फांसी दो, इसको फांसी दो। अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो कौन करेगा उसका काम, है ना। तो इसलिए इसका अर्थ ये भी नहीं होता है कि क्षत्रिय किसी की हत्या कर देता है तो उसको पाप नहीं। हाँ, अगर वो धर्म के लिए कर रहा है, धर्म की स्थापना या धर्म की रक्षा के लिए कर रहा है तो अलग बात है, पर गहना कर्मणोगति, अब ये कौन तय करेगा कि उसने धर्म के लिए किया है कि नहीं किया है, है ना। तब गहना कर्मणोगति, कर्म की गति बहुत गहन है। सो अभी नेक्स्ट श्लोक में इसी के कंटिन्यूएशन में ये 9 तक ये भगवान इसकी चर्चा कर रहे हैं। नाउ वी कैन टॉक ऑन टेक्स्ट नंबर 8।
क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता।
हाँ, भगवान यहाँ पर कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम्हारा अधिकार या तुम्हारी योग्यता कर्म करने में है, कर्म नहीं करने में नहीं है। क्योंकि तुम ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्थिर नहीं हो और इसलिए तुम्हें अपने कर्तव्य त्याग करना शोभा नहीं देता, उचित नहीं है तुम्हारे लिए। अर्जुन ऐसा सोच रहा था कि कर्म करने से वो भौतिक आसक्ति और भौतिक इच्छाओं में फंस जाएगा, अर्जुन ऐसा सोच रहा था। लेकिन उसको कर्म के फल का भी भय था, लेकिन भगवान उसको एक साधारण कर्म और एक निष्काम कर्म योग, ये दोनों का अंतर बता रहे हैं। निष्काम कर्म योग का अंतर क्या है कि फल भगवान पर छोड़ा जाता है, भगवान को दिया जाता है, और साधारण कर्म में फल हम खुद भोग करते हैं साधारण कर्म में। तो इसलिए भगवान यहाँ पर दोनों प्रकार के कर्म को बताया, दो प्रकार के कर्म, एक होता है ऑर्डिनरी कर्म और दूसरा होता है, प्रभुपाद इसको निष्काम कर्म और कई बार उसको कृष्ण कर्म भी बोलते हैं कृष्ण भक्ति में, क्योंकि कृष्ण भक्ति और निष्काम कर्म बहुत ही करीब करीब है, निष्काम कर्म और कृष्ण भक्ति। क्योंकि निष्काम कर्म योगी भी फल कृष्ण को दे रहा है, निष्काम कर्म योगी भी फल कृष्ण को दे रहा है। तो भक्ति योग जो होता है उसके बहुत ही करीब होता है वो। तो इसके विषय में अशोक प्रभुपाद एक जगह बताए कि अगर कोई व्यक्ति कर्म, जैसे भगवान यहाँ पर बताया अर्जुन तुम्हारा अधिकार है कर्म करना, तो प्रभुपाद उसके विषय में बताया कि मिथ्याचार के विषय में प्रभुपाद ने कहा कि कोई व्यक्ति उसका एलिजिबिलिटी अर्थात उसकी योग्यता है उसके अतिरिक्त कार्य करेगा या कर्म का त्याग कर देगा या जो अपने नियत कर्तव्य का पालन नहीं करेगा वो व्यक्ति पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी बदल सकता है अपना स्वरूप। यू से लाइक दैट, एक एग्जांपल प्रॉपर ने दिया हितोपदेश, हितोपदेश एक बड़ा अच्छा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारी स्टोरीज है जो हितोपदेश देता है। तो वो स्टोरी में एक स्टोरी ऐसी आती है कि एक बाघ था, टाइगर एक बाघ था, और वो अपने आप को संत दिखा रहा था, संत के कपड़े पहने हुए था जंगल में। तो वहां पर एक यात्री आया और वो यात्री बाघ को देखा घबरा गया,
बाघ
वो बाघ बड़ा संत। बाघ ने कहा कि अरे तुम आ गए, इधर आओ, मैं मेरे पास कुछ सोने के आभूषण है, मैं तुम्हें दान में देना चाहता हूं। तो उस ट्रैवलर जो था यात्री, उसने पूछा क्या तुम्हारे जैसे किसी बाघ का या शेर का मैं विश्वास करूं, क्या मुझे करना चाहिए तुम्हारे जैसे शेर का विश्वास करना? तो जो बाघ था वो हंसने लगा, मुझे पता था कि तुम यही सोचोगे कि शेर पर विश्वास कैसे करें और शेर कब से दान करने लगा, है ना, मुझे विश्वास था कि तुम ऐसा सोचोगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ असलियत क्या है, जब मैं जवान था तो मैं बड़ा हिंसक था और बहुत गायों को मनुष्य को बहुत मारा खा गया सबको। लेकिन बाद में मैंने एक संत व्यक्ति को देखा और उनसे मैंने चर्चा किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और तब से मैंने सब प्रकार के हिंसक कार्य त्याग कर दिए, सब ये हिंसक कार्य त्याग कर दिए और तब से मैं दान देता हूं और धर्म का पालन करता हूं, धर्म का आचरण करता हूं। और फिर उसने कहा, देखो वो जो शेर था उसने कहा उस व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, कि शास्त्र 8 प्रकार के अलग अलग धर्म कार्य का बात बताता है, जिसमें एक है यज्ञ करना, दूसरा शास्त्र को पढ़ना, तीसरा दान देना, चौथा तप करना, पांचवा सत्य बोलना, छठा धैर्य रखना, सातवां क्षमा करना और 8वां लोभ नहीं करना। तो सोचे ये तो संत हो गया, ये तो सही में संत हो गया, 8 चीज बता दी और क्या क्या कर रहे हैं जैसे धर्म के आचरण। फिर उसने कहा जिसमें जो 4 है वो दिखावे के लिए किया जा सकता है, पहले 4 यज्ञ, शास्त्राध्ययन, दान और तप, ये केवल शो ऑफ के लिए किया जा सकता है, और जो लास्ट 4 है वो केवल महात्माओं में पाए जाते हैं। लास्ट चार क्या थे? सत्य बोलना, धैर्य रखना, क्षमा करना और लोभ नहीं करना, ये केवल महात्माओं में प्राप्त होते हैं। तो वो तो बड़ा खुश हो गया यात्री, वाह क्या सही बात बता दी। तो बाद में क्या हुआ, उसने प्रचार वचार किया, लेक्चर दिया, श्रील प्रभुपाद की जाए, लेक्चर खत्म हो गया और बाद में उस व्यक्ति को कहा कि ये दान ले लो तो मेरे पास आकर के। तो जैसे दान लेने के लिए पास में आया तो वहां पर वो क्या बोलता, दलदल था, तो दलदल में उसका पांव फंस गया और जैसे ही पांव फंस गया शेर बड़े क्या सोच के बैठा था, मैं संत हूं, और तुरंत अटैक कर लिया, खत्म कर दिया उसको। ये तो उपदेश में ही कहा बताया, कई बार असुर लोग भी, डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर्स, असुर भी शास्त्र का उदाहरण देते हैं, जैसे हिरण्यकश्यप भी दे रहा था, रावण भी दे रहा था, कंस भी दे रहा था, डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर्स, बट दे आर ऑलवेज मिथ्याचारी, ये लोग मिथ्याचारी होते हैं। तो 8 प्रकार के धर्म कार्य के लिए आप थोड़ा अट्रैक्ट हुए थे, तो इट्स वेरी सिंपल, यज्ञ करना, पहले जो 4 थे, यज्ञ करना, शास्त्र पढ़ना, दान करना और तप करना, ये दिखावे के लिए भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है दिखावे के। और बाकी के जो चार थे जिसमें था धैर्य रखना, क्षमा करना, लोभ नहीं करना और सत्य बोलना, सत्य बोलना, धैर्य रखना, क्षमा करना और लोभ नहीं करना, तो ये चार जो है वो महात्माओं में पाए जाते। तो ये आठ प्रकार के धर्म आचरण होते हैं ऐसा उस शेर ने कहा था। लेकिन ये शास्त्र सही होगा, ये तो उपदेश में इसकी कहानी है। तो इट्स लाइक दैट। तो टेक्स्ट नंबर 9 जो है वो इस सेक्शन का समरी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पढ़िए।